हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कुछ गलत होने की बात सोचकर ही नैना का गला सूख गया। डरते हुए वो कुछ कदम और आगे बढ़ी। उसे टैक्सी के सामने थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ा हुआ टैक्सी ड्राइवर नजर आया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नैना ने उसे उसकी टैक्सी ड्राइवर वाली ड्रेस और कपड़ों से पहचान लिया। वो जोर से चीखी, लेकिन उसकी चीख पीछे से आ रहे किसी के हाथ के नीचे दब गई। वो हाथ उसके मुंह और नाक को बंद करता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नैना ने पूरा जोर लगाते हुए उसे छूटने की कोशिश की। जब नैना को कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने उस हाथ पर जोर से दांत काट लिए। वो आदमी जो नैना को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था अपना हाथ चेहरे से हटा लेता है। नैना पूरा जोर लगाकर वहां से चिल्लाती हुई भागी, बचाओ बचाओ। तभी सड़क बीचों बीच पहुंचते ही उसके एकदम सामने एक काले रंग की वैन आकर रुक गई। नैना एकदम अचानक से वहां सड़क पर रुक गई, क्योंकि अगर वो नहीं रुकती तो वो उस वैन से टकरा सकती थी। उस वैन का दरवाजा खुला, नैना समझ गई कि जो कोई भी है वो उसके ही पीछे पड़ा हुआ है। ये समझते ही नैना अपना रास्ता बदलती हुई वहां से भागने को हुई, लेकिन तभी पीछे से उसके सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार हुआ। नैना लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसे हल्की सी दो लोगों की आवाजें सुनाई दीं। मुझे चकमा देकर भागना चाह रही थी साली। इतना बोलकर नैना के पीछे खड़ा वो आदमी अपने हाथ में पकड़ा लकड़ी का डंडा वहीं पर फेंक देता है। वो किसी सूखे पेड़ से टूटी हुई मोटी शाखा जैसा ही लग रहा था। ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? इसे कुछ हो गया ना तो फिर हमारी जान पर बनाएगी। दूसरे आदमी की आवाज नैना के कानों में पड़ी। वो धीरे धीरे करके अपने होश खोती गई। उसकी आंखें बंद हुईं और उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। वो पूरी तरह बेहोश हो गई। ज्यादा मचमच मत कर, इतनी जोर से भी नहीं मारा है, जिंदा है ये, सिर्फ बेहोश किया है। दूसरे आदमी की बात सुनकर पहला आदमी बोला। वो दोनों मिलकर नैना को उठाकर वैन की सीट पर लेटा देते हैं और फिर खुद भी उस वैन में बैठ जाते हैं। उन दोनों के बैठते ही वैन का दरवाजा बंद हुआ और वो वैन वहां से सीधा ही एक तरफ चली गई। सुनैना का आज लास्ट एग्जाम था। आदित्य पिछली शाम को घर आया था और बोल रहा था कि वो नैना को ढूंढ लेगा। सुनैना को भी अब नैना की फिक्र होने लगी थी। वो अपने एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब से आदित्य ने उसे यकीन दिलाया था, पता नहीं क्यों उसे आदित्य की बातों पर यकीन करने का मन कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसने आदित्य की बात मानते हुए एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट किया और अपनी पढ़ाई करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसके लिए कितना जरूरी है। लास्ट एग्जाम वाले दिन विराज को उतनी बातें सुनाने का इतना फायदा हुआ कि आज उसने सुनैना का पीछा नहीं किया और ना ही उससे बात करने की कोशिश की। सुनैना को लगा कि शायद विराज को बुरा लगा हो, या फिर कुछ रियलाइज हुआ हो, या फिर वो सुधर गया हो, लेकिन सुनैना के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए सुनैना ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन विराज ने नहीं, आज अवंतिका ने सुनैना का रास्ता रोक लिया। क्या है अवंतिका, हटो सामने से। अवंतिका को ऐसे अचानक से अपने रास्ते पर आता हुआ देख सुनैना बोली, क्यों, सिर्फ लड़के ही तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं क्या? सुनैना के इस तरह बोलने पर अवंतिका ने उसे ताना मारने वाले अंदाज में एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मतलब है इस बात का अवंतिका? और मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अवंतिका के साइड से निकलने की कोशिश करते हुए सुनैना ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर कहा और आगे बढ़ने लगी। तभी अवंतिका दोबारा से उसके सामने आ गई और अपने दोनों हाथों से उसका रास्ता रोक लिया। उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो तुमसे बात करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, बस मुझे कुछ जानना है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो एंड देन यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। सुनैना अवंतिका से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक गहरी सांस भरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? वो उस दिन कौन था तुम्हारे साथ? वो फर्स्ट एग्जाम वाले दिन जो हॉट हैंडसम सा लड़का जो तुमसे बात कर रहा था, वो कौन था? तुम मुझे जानती हो? और कहाँ पर मिले? वो हमारे कॉलेज का ही है क्या? अवंतिका, जो अभी तक काफी ज्यादा अकड़कर और एटीट्यूड में सुनैना से बात कर रही थी, अचानक से ही उसका लहजा काफी खुशमिजाज लगने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी नजर आने लगी। उसी तरह खुश होते हुए वो सुनैना से ये बात पूछती है। सुनैना काफी उलझन से अवंतिका की तरफ देखते हुए बोली, कौन हॉट और हैंडसम लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम अवंतिका? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुनैना अवंतिका की तरफ देखते हुए बोली और इरिटेट होकर वहाँ से आगे बढ़ गई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि अवंतिका किसके बारे में उससे पूछ रही है। अरे रुको सुनैना, एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे उस तरह बात की, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बता दो। अच्छा, कम से कम उसका नाम या फोन नंबर ही दे दो, तुम तो उसे जानती ही हो ना, बताओ कौन है? सुनैना के पीछे लगभग दौड़कर आती हुई अवंतिका उससे काफी प्यार और नरमी से ये बात बोली। सुनैना अपनी आंखें ऊपर की तरफ करते हुए एक झटके में अपनी जगह पर रुक गई और पीछे घूमकर अवंतिका की तरफ देखकर बोली, लेकिन कौन सा लड़का? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अरे वो, उस दिन यहाँ पर जब मैं, तुम, विराज भाई और पूनम हम सब यहाँ खड़े थे, उस दिन आया था वो और तुम्हें डांट रहा था किसी बात के लिए। मुझे याद नहीं क्या बोला था उसने, क्योंकि मैं तो उसे देखने में बिजी थी, मेरा मतलब है बहुत देख रही थी, और फिर उसके बाद तुम उसके साथ साइड में वहीं तुम्हें लेकर गया था ना, ऐसा क्यों किया था उसने? सुनैना को पूरी बात डिटेल में समझाती हुई अवंतिका ने बताया। अब सुनैना को समझ आ गया कि अवंतिका किसी और की नहीं बल्कि आदित्य के बारे में बात कर रही है, और सिर्फ बात ही नहीं, वो तो उसका नाम और नंबर भी जानना चाह रही है। लेकिन नहीं, सुनैना उसे इस तरह आदित्य के बारे में नहीं बता सकती, आखिर वो उसका पति है, और ऐसे कैसे किसी भी लड़की को वो उसका नंबर दे सकती थी, वो भी अवंतिका जैसी सनकी लड़की, जो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। और अवंतिका की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो आदित्य को देखते ही उसे पसंद करने लगी थी। सुनैना को इस बात की वजह से अब अवंतिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसती हुई उसकी तरफ देख रही थी, जबकि अवंतिका उसी तरह उम्मीद भरी नजरों से सुनैना की तरफ देखते हुए अभी भी अपने सवाल के इंतजार में थी। अच्छा वो लड़का, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, और वो तो बस उस दिन एग्जाम, हाँ नेक्स्ट एग्जाम के बारे में मुझसे पूछने आया था, क्योंकि तुम तो जानती ही हो मैं कॉलेज की टॉपर हूँ, तो सब मुझसे ही पूछते हैं इस बारे में। सुनैना अपने आप पर पूरी तरह से काबू करते हुए एकदम सपाट लहजे में झूठ बोलते हुए अवंतिका के सवाल का जवाब देती है। अवंतिका को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन भले ही वो आदित्य को देखकर उसके ख्यालों में कहीं खो गई थी, लेकिन फिर भी इतना तो उसे भी समझ आया था कि आदित्य और सुनैना एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन इतना बोलकर सुनैना तेजी से वहां से चली गई, इससे पहले कि अवंतिका उसके पीछे आ पाती। क्या ये सच में उसे नहीं जानती, या फिर ये झूठ बोल रही थी? सुनैना को वहां से जाते देख उसकी बैग को घूरते हुए अवंतिका जैसे खुद से पूछती है, और फिर थोड़ी सी मायूस हो जाती है ये सोचकर कि उसे उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, उसका नाम तक नहीं। बस हाँ सर, जैसा आपने कहा था वो हो गया है, और हम अभी भी रास्ते में हैं, फोन पर बात करते हुए एक आदमी किसी से कहता है।
ठीक है, तुम नजर रखो और अपना काम ठीक से करो, मैं भी बस यहाँ से निकल रहा हूँ। दूसरी तरफ से काफी जानी पहचानी सी आवाज आती है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आई गेस मेरा ये प्लान जरूर वर्क करेगा। कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन देखकर अक्षत खुद से कहता है और फिर तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। कार में बैठने के बाद उसका मोबाइल फोन रिंग होता है। ब्लूटूथ से कॉल रिसीव करके वो दोबारा फोन पर बात करने लगता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने लोकेशन ट्रेस कर ली है, आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं भी सीधा वहीं पहुंचता हूँ। अक्षत कार स्टार्ट करते हुए कॉल पर बात करता है और फिर तेजी से गाड़ी ड्राइव करके एक तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें उसके सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड थे। क्रमशः